आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 10th के साइंस का 3rd चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आप लोगों को पता होगा बच्चों, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर जो है, ये आप लोगों को छोटी क्लासेस से ही इसका बेस समझाया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझाई जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज 8th क्लास से ही आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 10th में जो सिखाया जाएगा उसमें थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाएंगी और इलैबोरेट करके हमको समझाया जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज सिखाई जा रही है अबाउट मेटल्स, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये एक्टिविटीज के थ्रू हम लोगों को समझाई जा रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्टिविटी 3.1 करना है। ये एक्टिविटी जो है ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 पर है। इसमें आप लोगों को क्या करने के लिए कहा गया है, आपको कहा गया है कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स कलेक्ट करने हैं। आयरन का मेटल कलेक्ट करना है, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये सभी के सभी मेटल्स आप लोगों को कलेक्ट करने हैं और आपको इनका अपीयरेंस चेक करना है, ये किस तरीके के दिखते हैं ये आपको चेक करना है। हो सकता है कि किसी किसी मेटल पर कुछ कवरिंग चढ़ गई हो किसी कलर की, तो आपको वो साफ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। सैंड पेपर की सहायता से आप लोगों को उसको रगड़ के साफ कर लेना है और उसके बाद आप उसे ध्यान से देख पाएंगे। एक्टिविटी 3.1 भी हो गई आपकी, और आपको इसमें ये बेसिकली नोट करना है कि सभी मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है। सभी मेटल्स के पास एक शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकदार होते हैं सभी मेटल्स, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेटालिक लस्टर। इनके पास एक लस्टर होता है मेटल्स के पास, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्पेशल टाइप का लस्टर है, ये जो स्पेशल टाइप की चमक है, ये मेटल्स के पास ही होती है और इसको हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले मेटालिक लस्टर के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2 करनी है। इस एक्टिविटी में हम ये चेक करेंगे बेसिकली कि मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो आप लोगों को अगेन कुछ मेटल्स लेने हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, और आप लोगों को एक शार्प नाइफ की सहायता से इन सभी मेटल्स को काटने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो, एक्टिविटी 3.2 में ये कहा गया है कि जब भी आप लोग सोडियम के मेटल के साथ डील करेंगे या फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो उस वक्त आप लोग उसको एक पेयर ऑफ टॉन्ग्स यानी कि चिमटे की सहायता से ही पकड़ेंगे, क्योंकि जो सोडियम होता है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही ये रिएक्शन शुरू कर देता है, बर्न हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है उसको, चिमटे की सहायता से उसको पकड़ना है, और वो जैसे ही उससे कोई मॉइस्चर चिपकता है, या फिर जैसे आप लोगों को पता होगा रूम के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमेशा होते हैं, तो वो जैसे ही सोडियम से रिएक्ट कर जाते हैं, उससे जैसे ही चिपक जाते हैं, तो वो रिएक्शन शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को सोडियम को अच्छे से साफ कर लेना है और उसके बाद ही एक्टिविटी करनी है। साफ आप लोगों को उसको एक टिश्यू पेपर की सहायता से या फिल्टर पेपर की सहायता से करना है। उसके बाद आप लोगों को सोडियम को भी काटने की कोशिश करनी है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। सोडियम और उसके ही जैसे कुछ और मेटल्स भी होते हैं, सोडियम पोटाशियम, ये मेटल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इनको काटा जा सकता है नाइफ से, लेकिन बाकी के मेटल्स कॉपर, एल्युमिनियम या फिर आयरन, ये सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटाशियम और उसी की फैमिली के जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिवली, और उनको हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं कॉपर, एल्युमिनियम या फिर आयरन, ये हार्ड होते हैं, इनको आप चाकू की सहायता से नहीं काट सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 3.3, इसमें आप लोगों को फिर से आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के अलग अलग मेटल के पीसेस लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सभी मेटल्स जो है बारी बारी से रखना है आपको जमीन पर, और आपको हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से इनके ऊपर 3-4 बारी चोट करनी है, मारना है इनको हथौड़े की सहायता से। आप इसे जैसे ही मारना शुरू करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं या जिंक के पीसेज या लेड के या कॉपर के पीसेज, ये चपटे होने शुरू हो जाते हैं, इनका जो शेप होता है वो चेंज होने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, जिसके थ्रू हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी। आप लोगों को ध्यान होगा मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को जिसके थ्रू हम मेटल्स को पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर दें, ये मेलिएबिलिटी कहलाती है। आप लोग यहाँ पर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहे। द प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ये आप लोग मेलेबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर, और मेटलिक लश्चर के बारे में लिख सकते हैं कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लश्चर। ऐसे कर लेना कि वहां पर लिख लेना मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही 1, 2, 3, 4 करके सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज के थ्रू समझ रहे हैं, आप लोग सिर्फ पॉइंट्स में लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से लिख लेना। सबसे पहला मेटलिक लश्चर के बारे में लिख लेना, सेकंड उसकी हार्डनेस के बारे में लिख लेना, थर्ड मेलेबिलिटी के बारे में लिख लेना, और लास्ट हम लोग जो यहाँ पर 2-3 और पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी एक एक लाइन लिख लेना बस। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 3.4 में आपको बोला है कि आपको बताने हैं उन मेटल्स के नाम जिनके आप लोगों ने वायर देखे हैं। तो आप लोगों ने कॉपर का वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम का वायर देखा होगा, इस तरीके से बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं इनको हम पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटल्स की डक्टिलिटी कहलाती है। द अबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये भी आप लिख लेंगे, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड जो होता है ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। इसका मीनिंग ये है कि छोटे से गोल्ड को ही, छोटे से गोल्ड के पीस को ही आप लोग बहुत ही लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही पतली वायर में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट भी बताया गया है एक, कि अगर किसी 1 ग्राम के गोल्ड के पीस को आप खींचते चले जाएं, ऐसे नहीं हाथ से नहीं खींचते चले जाएं, मतलब अगर आप उसको पिघला के और उसके बाद उसको स्ट्रेच करते चले जाएं, तो अबाउट आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की पतली वायर बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितना पतला होगा वो वायर जो हमने गोल्ड से बनाया है, कि हम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। अभी देखो ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मेटल का शेप चेंज कर सकते हैं, और जिस तरीके का शेप हमें चाहिए वैसा चेंज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी 3.5 करने को कहा है। इसमें आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर लेने हैं, उसको आप लोगों को क्लैंप कर देना है, मतलब कि आप लोगों को फिक्स कर देना है एक होल्डर के ऊपर। यहाँ पर आप होल्डर देख सकते हैं फिगर 3.1 में, पेज नंबर जो है वो है 38। इसमें आप लोगों को बेसिकली ऐसा इसलिए करने के लिए कहा गया है क्योंकि आपको चेक करना है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमारे जो घर के बर्तन होते हैं खाना बनाने के वो सभी मेटल्स के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, ये एक्टिविटी 3.5, इसमें आप लोगों को एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर लेने हैं और उसको क्लैंप कर देना है, फिक्स कर देना है, एक स्टैंड में लगा देना है, और उसको आपको हीट करना है बर्नर की सहायता से या फिर मोमबत्ती की सहायता से आप लोगों को उस पतली वायर को हीट करना है। आप उसे ज़्यादा देर तक हीट करने लगेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो मेटल का वायर होगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सारी की सारी हीट है वो मेटल अब्सॉर्ब करने लगा है। इसका मीनिंग यह है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इनमें से भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि सिल्वर और कॉपर जो हैं ये दोनों मेटल्स बेस्ट हैं, ये बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, ये सबसे ज़्यादा जल्दी हीट को कंडक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ये गर्म हो जाते हैं। और वहीं पर आपको ये भी बताया गया है कि लेड और मरकरी नाम के जो मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सभी के सभी मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि आप लोगों को एक नॉर्मल ट्रेंड बताया जाता है कि ऐसे सभी मेटल्स होते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक अलग हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी सभी मेटल्स से अलग हो जाए तो हम उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यह है कि सभी के सभी मेटल्स तो गुड कंडक्टर हैं हीट के, लेकिन जो लेड और मरकरी हैं ये जो हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, इसीलिए हम इनको एक्सेप्शन कहेंगे। अब जहाँ पर आप लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट किया है वहां पर एक पॉइंट और डाल देना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोगों को समझना है वो है कंडक्टिंग नेचर ऑफ मेटल्स, लेकिन इस बार वो क्या कंडक्ट कर रहे हैं, इस बार वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी 3.6 यहाँ पर हम लोग को बोला गया करने के लिए, पेज नंबर 39। इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है। यहाँ पर देखो फिगर 3.2 में पेज नंबर 39 पर ही आप लोगों ने क्या किया है, बैटरी से वायर्स लगाए हैं और वायर्स से आपने बल्ब लगाया है और वायर्स की सहायता से आपने ये सर्किट तैयार किया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्लिप ए और बी है उसके बीचों बीच अभी आपका जो सर्किट है वहां पर गैप दिया गया है। वहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लगाने हैं और जैसे ही आप लोग क्या करेंगे इन क्लिप से मेटल लगा देंगे, अगर वो कंडक्टिंग होगा तो आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी, अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी। तो आप लोगों को खैर पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है और लिख देना है नंबर डाल के, जो भी आपका प्रॉपर्टी का नंबर होगा आप लिख देंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एक फैक्ट आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा जो वायर्स होती है हमारे घरों की, बिजली की जो वायर्स होती है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है। ये कोटिंग रबड़ जैसी दिखने वाली कोटिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, और ये कोटिंग जो है ये जिस मटेरियल की चढ़ी होती है उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक कंपाउंड है, पॉलीमर है ये, मतलब पॉलीमर तो आप लोगों को पता ही होगा, छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स को जोड़ जोड़ करके, छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ जोड़ करके एक बड़ी चेन टाइप बनाई जाती है, उसी को पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक पॉलीमर है और रबड़ जैसी दिखने में होती है, अपीयरेंस इसकी जो होती है, और ये नॉन कंडक्टिंग होती है, इसीलिए वायर्स के ऊपर इसकी एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है ताकि जब वायर्स के थ्रू करंट पास करे तो हम लोग अगर वायर टच कर जाएं गलती से तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। अभी एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं मेटल्स की और वो है उनका सोनरस होना। आप लोगों को याद होगा मेटल्स जो होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था, मेटल्स को अगर हम स्ट्राइक करते हैं किसी हैमर से या फिर किसी भी चीज से तो वो एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो अलग सी साउंड जो होती है वो बाकी नॉन मेटल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अजीब सी साउंड जो है वो सिर्फ मेटल्स की ही खासियत है और इसीलिए ये उनकी एक प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कहलाती है सोनरस होना, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। तो आप लोग मेटल्स की ये प्रॉपर्टी भी ऐड कर देना अपनी लिस्ट में कि मेटल्स आर सोनरस, और इसके बारे में चाहे तो आप लिख लेना कि मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। यही कारण है कि हमारे मंदिरों में या फिर स्कूल्स में जो बेल्स होती हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं। ये तो सारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात मेटल्स की, अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नॉन मेटल्स होते कौन कौन से हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स होते हैं। सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये जो नॉन मेटल्स है या तो आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या गैस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, एक हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ब्रोमीन नाम का एक नॉन मेटल है, ये हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी 3.7 करने के लिए कहा गया है, ये एक्टिविटी 3.7 है पेज नंबर 39 पर। इसमें आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों ने अभी अभी मेटल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा आपने कि वो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्चर होता है उनके पास, सोनरस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए यही सब प्रॉपर्टीज आप लोग क्या नॉन मेटल्स के बारे में भी कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं वो नॉन मेटल्स से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, उनके पास मेटल्स के पास एक मेटालिक लश्चर होता है जो कि नॉन मेटल के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्टिविटी 3.7 करने के लिए कहा गया है, बेसिकली इसमें आपको 3.1 से 3.6 तक आपने जो मेटल्स के बारे में पढ़ा है आपको बस ये बताना है कि नॉन मेटल्स में क्या वही प्रॉपर्टीज विजिबल हैं या नहीं है। और आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटल्स कलेक्ट करने हैं सबसे पहले, तो जैसे कि कार्बन, कार्बन के कौन कौन से फॉर्म आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कोल यानी कि कोयला कलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है वो यूज कर सकते हो आप लोग, सल्फर या आयोडीन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स जो हैं ये आप लोग ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले कार्बन जो यहाँ पर टेबल 3.1 बताया गया है इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो जैसे कार्बन है या सल्फर है या आयोडीन है, सबसे पहले आप लोगों को बोला गया है एलिमेंट का नाम लिख देना है फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में उसका सिंबल लिख देना है। कार्बन का सिंबल आपको पता है कैपिटल सी होता है, सल्फर का सिंबल भी आपको पता है कैपिटल एस होता है, आयोडीन का I2 होता है कैपिटल I2। उसके बाद थर्ड कॉलम ऑनवर्ड्स आप लोगों को बताए गए हैं जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में। तो टाइप ऑफ सरफेस के बारे में अगर हम बात करें, कार्बन की जो सरफेस होती है वो रफ होती है, वो स्मूथ नहीं होती है। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि उनकी सरफेस स्मूथ होती है, एक शाइन होता है, मेटल लश्चर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को कार्बन में देखने को नहीं मिलता है या फिर बात करें कि नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी सरफेस रफ होती है, स्मूथ नहीं होती है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है, तो इनके पास कोई लस्टर नहीं होता है। बात करें हार्डनेस की, तो आपको पता है अगर आप लोग किसी कोल के टुकड़े को हथौड़े से मारेंगे तो वो पूरा चूरा चूरा हो जाएगा, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को ये पता चल रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उतने हार्ड भी नहीं होते हैं। उनको हम हैमर की सहायता से जैसे ही हिट करेंगे, उसके ऊपर जैसे ही हम लोग स्ट्रोक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो नॉन मेटल है वो ब्रेक कर जाएगा इनटू पीसेस। तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर नॉट दैट हार्ड। नेक्स्ट, मेलेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी बोला कि कोल को अगर हम हैमर करते हैं तो वो थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक कर जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। इसका मतलब वो मेलेबल भी नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नीदर आर दे डक्टाइल। इन लोगों को हम पतले पतले वायर में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। कोल को, कोयले के पीस को आप पतले वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब बोला है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम नॉर्मल नॉन मेटल की बात करें तो दे आर जनरली नॉन कंडक्टर और नॉट दैट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कि ग्रेफाइट की बात करें, ये एक कार्बन का फॉर्म है, कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट, लेकिन ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी बिजली को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट है इसके बारे में अगर हमें पूछा जाए स्पेसिफिकली, तो हम ये कहेंगे कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहाँ पर देखो बोला है कि सोनोरिटी, यानी कि आप लोगों ने देखा था मेटल्स को हम लोग जब हिट कर रहे थे तो एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। तो क्या हम नॉन मेटल को हिट करेंगे तो भी हम लोग को ये अजीब सी साउंड मिलेगी? देखो, आप लोग के घर में जो पॉलिथीन होती है जिसमें आप लोग सामान वामान खरीद के लाते हैं, वो भी एक नॉन मेटल है। उसे हिट करके देखो किसी भी चीज़ से, मेटल से या किसी हैमर से, किसी भी चीज़ से हिट करके देखो, क्या आपको कोई साउंड प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है? वहाँ पर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर नॉट सोनरस। अब यहाँ पर क्या किया गया है, आप लोगों ने देखा कि सभी के सभी जो मेटल्स हैं उनकी इकट्ठे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट बना के दी गई है एक्सेप्शंस की। सबसे पहला बताया गया है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, मतलब कि उस तापमान पर जिस तापमान पर आपका कमरा है, इस तापमान पर सभी के सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि जो मरकरी है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो थर्मामीटर आता है उस थर्मामीटर में मरकरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी से टच कराते हैं तो वो मरकरी जो है वो राइज करने लग जाती है थर्मामीटर के अंदर, उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है। तो वो बता रहा है कि हमारी टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती मरकरी, तो वो टेम्परेचर बताने के लिए उसका यूज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सॉलिड की चीज़ें अपना शेप चेंज थोड़ी ना करती हैं, लिक्विड की चीज़ें आसानी से अपना शेप चेंज कर सकती हैं। तो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, बाकी के सारी मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। इसी के साथ में एक और बात बताई गई है कि आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई मेटल मेल्ट करना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा। आप लोग किसी लोहे को पिघलाने की कोशिश करो, बहुत देर बाद वो पिघलना शुरू करेगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की यहाँ पर बात करें तो गैलियम और सीजियम नाम के दो मेटल्स हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। इनको आप अपने हाथ पर, हथेली पर रखेंगे, तुरंत ये पिघल जाएगा। इतना ही टेम्परेचर, जो जितनी बॉडी का टेम्परेचर हमारा होता है उतने ही टेम्परेचर पर ये जो गैलियम और सीजियम नाम के दो मेटल्स हैं ये पिघल जाते हैं। लेकिन बाकी के जो मेटल्स होते हैं इनको पिघलाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? गैलियम और सीजियम। तो आप लोगों को एक्सेप्शन याद करने हैं, आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक्सेप्शन बताया गया, सेकेंड एक्सेप्शन, कि आयोडीन नाम का जो नॉन मेटल है ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी लश्चरस होता है, इसके पास चमक होती है। आपने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन कोयले का जो फॉर्म होता है ये नॉन मेटल है और इसमें लश्चर भी नहीं है कोई, इसमें कोई चमक नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें आयोडीन के बारे में, आयोडीन नाम का जो नॉन मेटल है इसके पास एक लश्चर होती है, चमक होती है इसके पास, तो ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी लश्चर रखता है, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है और ये अलग अलग फॉर्म्स में हमको मिलता है। कौन कौन से फॉर्म्स में मिलता है? डायमंड के फॉर्म में मिल जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल जाता है, और एक और फॉर्म होती है फोलरीन्स कार्बन। इन सभी फॉर्म्स में ये हम लोग को मिल जाता है। अलग अलग फॉर्म्स में हमको कार्बन नेचर में अवेलेबल होता है, और कार्बन के हर एक फॉर्म को उसका एलोट्रोप कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कार्बन जिन अलग अलग फॉर्म्स में मिल रहा है वो सभी उसके एलोट्रोप्स हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्बन का एक फॉर्म जो है वो डायमंड भी होता है, डायमंड जो है वो क्या कहलाएगा, वो कार्बन का एलोट्रोप कहलाएगा। और आप लोगों को अभी अभी पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे कोयले की अगर बात करो तो कोयले को अगर आप हैमर से हिट करोगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगा, वो उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप डायमंड के बारे में बात करो तो डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसकी हार्डनेस जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है। एंड इन फैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब कि प्रकृति में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है, सबसे हार्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कार्बन का फॉर्म यानी कि कार्बन का एक एलोट्रोप डायमंड है। और इतना ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का जिस पर वो बॉयल होना शुरू कर जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी के बारे में, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर आप लोगों को ग्रेफाइट के बारे में भी बताया गया है कि ऑल दो यानी कि हालांकि सारे के सारे नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नाम का एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन का अगेन एक एलोट्रोप है, और इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट बैटरीज वगैरह जो होती हैं आप लोगों की, छोटी छोटी सेल्स जो होती हैं, इनमें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड एक रॉड है जो बिजली कंडक्ट करती है, और ये ग्रेफाइट की बनी हुई होती है बहुत सारे सेल्स के अंदर, तो ये इतना ज़्यादा कंडक्टिंग है कि इसको हम लोग सेल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट विच इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इवन दो यानी कि हालांकि ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट अल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम। आप लोग ना इसी क्लास में, क्लास 10 में ही आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जब पढ़ोगे तो आप लोगों को अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं ये पता चल जाएगा। एस ग्रुप एस ब्लॉक नाम का एक ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स का है। तो यहाँ पर हम उन्हीं मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अल्कली मेटल्स की खास बात क्या होती है, अल्कली मेटल्स की खास बात ये होती है कि इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है ये अल्कलाइन होता है, यानी कि जब हम लोग इनको पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन होता है, इसीलिए इनको अल्कली मेटल कहते हैं। और इनमें से इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। खास बात क्या है, खास बात ये है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि वो भी अल्कली मेटल का मेंबर है। और ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है, इसीलिए आप लोग इसको आसानी से चाकू की सहायता से, एक शार्प नाइफ की सहायता से काट सकते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, आप उनको चाकू की सहायता से नहीं काट सकते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स को हम लोग चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनको हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब हम जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनको और अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे मेटल और नॉन मेटल के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की सहायता से। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3.8 करने के लिए कहा गया है। एक्टिविटी 3.8 है वो पेज नंबर 40 पर है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन आपको याद होगा चैप्टर 1 में भी आपने यूज़ किया था, लैब में आपको मिल जाएगा। आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है, अलग अलग जगह पर लेना है, मिक्स नहीं करना है इन्हें। उसके बाद आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को आप लोगों ने बर्न करना है, यानी कि आपको उसको हीट करके माचिस की सहायता से या बर्नर की सहायता से आपको उसको बर्न करना है, और उसकी जो राख मिलेगी आपको उसको आपको इकट्ठा कर लेना है एक किसी भी वॉच ग्लास में या फिर टेस्ट ट्यूब में आपको इसको इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा पानी मिला देना है, उसको पानी में अच्छे से घोल देना है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है मैग्नीशियम रिबन की राख जो आप लोगों को मिली है उसको आपने पानी में घोला, तो आप लोगों को ये जो घोल मिला है, जो सोल्यूशन मिला है, इसको आपको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है। आप कैसे चेक करेंगे, आप उसके पास लिटमस पेपर ले जाएंगे, रेड लिटमस भी एक बार लेकर के जाओगे और एक बार ये ब्लू लिटमस लेकर के जाओगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कहाँ से आया, ये आया मैग्नीशियम को हीट करने पर, जो आप लोगों ने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखो किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को, किसी भी एलिमेंट को बर्न करने का क्या मतलब है कि हम उसका ऑक्सीजन के साथ में वहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बर्न जब कर रहे हैं हमारे मैग्नीशियम रिबन को, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मैग्नीशियम जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बर्निंग के प्रोसेस के अंदर अंदर ही और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आप लोगों को ऐश की फॉर्म में, राख की फॉर्म में मिला, आपने इसको पानी में घोल दिया, तो आप लोगों को जो सोल्यूशन मिला वो किस नेचर का है, वो किस तरीके का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो घोल है ये बेसिक होगा। मेटल्स जितने भी होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं उनकी जो घोल होती है पानी में, जो एक्वस सोल्यूशन है मेटलिक ऑक्साइड्स की, जो सोल्यूशन बनती है, एक्वस सोल्यूशन बनती है, वो कैसी होती है, वो होती है बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर जब आप लोग चेक करेंगे मैग्नीशियम रिबन जो है आपने बर्न किया, उसकी राख को पानी में घोला, तो इस घोल को जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो घोल है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ब्लू वाला लिटमस इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपने सोल्यूशन में डाला है ये क्या है, ये बेसिक है, क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है। ये तो बात हो गई मैग्नीशियम की। अब देखो आपको क्या करना है, आपने सल्फर का पाउडर लिया हुआ था, सल्फर के पाउडर को आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और अब आपको उस सल्फर के पाउडर को हीट करना है। बर्न करने के लिए आपको कहा गया है, आप लोगों को बर्न करना है बेसिकली, और उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डाल के सल्फर पाउडर को एक टोंग्स की सहायता से, चिमटे की सहायता से अपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है, बर्नर के पास लेकर के जाना है, और जैसे ही वो हीट होना शुरू हो जाएगा तो उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको भाप एस्केप नहीं करने देनी है, उड़ने नहीं देनी है वो भाप, आपको भाप इकट्ठा कर लेनी है। जैसे ही भाप निकलने लग जाएगी आप क्या करोगे, उसमें पानी ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स कर देना, अच्छे से शेक करके मिक्स कर लेना। आपने जो ये घोल तैयार किया है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है बेसिकली, ये कहाँ से आया, ये तब आया जब हमने सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, इनफैक्ट बर्न किया, तो वहां पर सल्फर का ऑक्साइड बन गया। और सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। तो सल्फर ऑक्साइड जो है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पर हमें मिला है सोल्यूशन के अंदर, ये जो है ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। क्यों, क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड्स क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि जनरली मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो एसिडिक होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेज नंबर 40 पर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी इज एन एक्सेप्शन, मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर मरकरी लिख देंगे। मरकरी का सिंबल जो होता है वो Hg होता है, कैपिटल एच स्मॉल जी, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मरकरी लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है ये पूछ रहा है, आपको एक ऐसे मेटल का नाम बताना है विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, क्योंकि उनकी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप लोगों ने पढ़ा था कॉपर और सिल्वर जो होते हैं ये दो मेटल्स, दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आप लोग लिख देंगे कि कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछा है कि ऐसे मेटल का नाम बताओ विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि लेड और मरकरी नाम के जो मेटल्स होते हैं बोथ ऑफ देम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। बहुत इजी है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही है कि मेलेबल वो मेटल्स होते हैं हु कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन शीट्स, एंड डक्टाइल वो मेटल्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन वायर्स। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में यहाँ पर आप लिख देंगे तो हो जाएगा कि आप एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल्स को जब हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए तो वो मेलेबिलिटी होती है, और थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाए तो वो डक्टिलिटी होती है। और इसी के साथ में आपकी आज के जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर कर दी हैं, और आपको क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है जो आज आपने पढ़ा है। कोई डाउट हो कहीं पर भी तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। बाकी ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।